ओम शांति। दस दिन से आप खास, दस दिन हुए ना, आठ दिन हुए, आठ दिन से आप सब बहनों और भाइयों को विशेष भट्टी करने का मौका मिल गया। नाम एमएससी और डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन सब बातों से हट करके आराम से बैठकर सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ सुनने का नहीं। आठ दिन से प्रैक्टिकल हुआ ना, हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल, थिंक नो ईवल, डूइंग का तो सवाल ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सब बातों से फारग होकर मधुबन में हर एक आकर के भट्टी करना चाहता है, और आपको ये कोर्स के बहाने मौका मिलता है। साल में कितनी बार ऐसा मौका मिलता है? एक ही बार। एक बार एग्जामिनेशन के लिए भी आते हैं, चार बार हो जाता। बताइए, इतना इतनी बार चांस मिलता है मधुबन आने का किसी को? बहुत खुशी हुई हमारे डॉक्टर गुप्ता जी और गुलियानी भाई जी, ये मैं जा रहा था बेंगलोर तो उस दिन मिलने आए और आज का निमंत्रण दिया। तो मैं तो भूल गया था बिल्कुल, क्योंकि जब यहां से जाते हैं तो उस दुनिया में जाने के बाद वहां की बातें याद रहती हैं। तो आज सवेरे जब आए तो फिर मुझे याद आया कि निमंत्रण तो दिया था। देखने में आता है समय के अनुसार इस समय सब तरफ आत्माएं इच्छुक हैं ईश्वरी ज्ञान लेने के लिए, वैल्यूज के बारे में सुनने के लिए, मेडिटेशन के बारे सुनने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बड़े बड़े लोग भी तैयार हैं। प्रैक्टिकल देखने में आया, बेंगलोर में बहुत थोड़ा दिन हम तो थे, 7 तारीख वहां पहुंचे तो 7 शाम को वीआईपीज आईपीज की गेट टुगेदर थी। उनमें से कई संपर्क में थे, थोड़े नए भी थे, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, लेकिन सुनने के लिए बहुत इच्छुक। आदरणीय दादी गुलजार जी भी वहां 2 दिन पहले पहुंची हुई थी मेरे से, तो दादी जी का भी और साथ में मेरा भी, दोनों का ही उनके साथ में इंटरेक्शन था। दादी जी के तो आशीर्वचन थे, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं लोग, और मुझे फिर कहा कि आप अनुभव सुनाएं। तो 35-40 मिनट, अब 53 साल का अनुभव, सारा तो हर बात तो सुनानी मुश्किल, लेकिन जो उन आत्माओं के फायदे की चीज हो वो उनको सुनाई। ज्ञान की प्रकाष्ठा होने से क्या फायदा होगा, स्वयं का परिवर्तन कैसे हुआ, और दूसरा जिस समय ज्ञान लिया बाय चांस उस समय यज्ञ की वो आत्माएं जिनको आदि रतन कहें लगभग सभी से मिलने का मौका मिला, बहनों से भी बड़े भाइयों से भी मम्मा से बाबा से, तो उस समय बाबा की क्या गाइडेंस हमें मिली, किस तरह से सो परिवर्तन पर अटेंशन बाबा दिलाते रहे, वो सारा कुछ उनके सामने सुनाया। फिर उसके बाद बाबा ने कैसे ट्रेनिंग दी, मिसाल उनको दिया था जैसे बड़े मठ हैं तो मठाधीश जो गुरु होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी को ढूंढते हैं, और छोटी उम्र में 8-9 साल 10 साल की उम्र में ही उनको वो आत्मा नजर आती हैं जो जिनको पर्सनली शंकराचार्य जी या जो संत होते हैं वो पर्सनली उनको एजुकेट करते हैं। संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर भी रखेंगे, शास्त्रों के बारे भी सुनाने वाले टीचर रखेंगे वो, लेकिन जो उनकी मान्यताएं हैं या उनका जो ज्ञान है जो उनका अनुभव है वो पर्सनली उनको देते हैं और कई वर्षों तक ट्रेनिंग देते हैं। तो एक प्रकार से मैं ये तो नहीं कहता हूं कि बाबा को मैं मठाधीश कहूं, बाबा तो स्वयं को बहुत गुप्त रखते थे, हमेशा कहते थे देखो आप बच्चों के कल्याण के लिए, बाबा तो निमित्त है, शिव बाबा आकर के दृष्टि देता है, शिव बाबा आकर के जो भी महावाक्य उच्चारण करता है, आपका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ चाहिए। तो वो अनुभव, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम फिर सेवा में आते हैं, पहला अनुभव ये कि बाबा ने सो उन्नति के लिए किस तरह से मुरली की तरफ ध्यान खिंचवाया, जब तक मुरली पड़े नहीं तब तक नाश्ता करना नहीं, और मुरली के बाद वास्तव में एक और बात बाबा ने सिखाई थी कि मुरली सुनने के बाद मुरली हो गई सो सेवा, और उसके बाद फिर जब तक किसी दूसरी आत्मा की सेवा नहीं की है तब तक नाश्ता नहीं करना, और वो 40 दिन की ट्रेनिंग थी। आपको तो 10 दिन में देखो डिग्री मिल जाती है, 40 दिन की बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन के पास में एक ब्लू हेवन बिल्डिंग थी, वहां फर्स्ट फ्लोर पे बाबा आकर के रुके थे, और सवेरे सवेरे 6:30 बजे हम लोग कोलाबा से वहां जा करके मुरली सुनते, 5-6 लोग होते, पर बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान सुना रहे, और मुरली सुनने के बाद फिर बाबा कहते थे ऐसे स्थान पर जाओ जहां आप ज्ञान शेयर कर सको। बगीचे का बताया, मंदिर का बताया, तो वो प्रैक्टिकल ऐसे करते थे, फिर बाबा को जाकर के सुनाते थे। बाबा एक एक बात बैठ के सुनते थे, क्या सुना के आए, क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे, क्या उत्तर आपने दिया, फिर उसमें करेक्शन करते थे। फिर दूसरे दिन जाके किसी नए को सुनाना, फिर बाबा को सुनाना, उसकी रिजल्ट देखी फिर प्रैक्टिकली। तो वो जो आद की ट्रेनिंग थी वो उसने परिपक्वता लाई हमारे जीवन में, ज्ञान के हिसाब से और साथ साथ चार्ट रखने के हिसाब से। फिर बाबा ने सेवा करना सिखाया, दूसरी प्रकार की सेवा, यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। कैसे सर्विस करके यज्ञ के लिए जो खरीदारी याद करते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस पे कैसे चीजें मिले, क्योंकि लोग प्रॉफिट तो लेते हैं सब जगह, तो और जगह से प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन यज्ञ से ना लें, अपना भाग्य बनाएं। इस तरह से फिर वो उस समय का जो टाइम था वो भी सीखने को मिला बहुत कुछ, क्योंकि बाबा कहते थे बच्चे सिर्फ कोर्स कराना यही सेवा नहीं है, ऑलराउंड सर्विस करना सीखो। उसके बाद फिर आजकल की मुरलियां जो चल रही हैं साकार की, तो उसमें आप प्रदर्शनी के बारे में सुनते हैं काफी, प्रदर्शनी के चित्र बनाने की बातें उन दिनों चलती थी, तो बाबा स्वयं चित्रों के आइडियाज देते थे, वो चित्र बनवाना आर्टिस्ट से, फिर बाबा को दिखाना। इस तरह से काफी प्रिंटिंग जॉब्स, यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करना और जो कनेक्टेड चीजें हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें एक अनुभव विशेष है, बाबा बच्चों के अंदर क्या देखता है तो बाबा जानता है, पर जब बाबा बॉम्बे में पहली बार आए हुए थे उस समय पेपर में आया, फरवरी में, फरवरी 1960 की बात है ये, शिवरात्रि के टाइम पर पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर नया बना था उसका उद्घाटन करने आएंगे, तो बाबा ने कहा पंडित जी को जाकर के ये रियल गीता की एक कॉपी देनी है और साथ में ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स पड़ा प्रसाद के रूप में। तो उस समय मैं तो सर्विस में था, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम छुट्टी ले सकते हो। मैंने कहा बाबा एप्लीकेशन देता हूं, एक हफ्ते की छुट्टी ली और साथ में बाबा ने एक और भाई जो सोमनाथ साइड का रहने वाला था, बुजुर्ग थे, उनको भेजा। तो हम दोनों ने जाकर के एक मंदिर के धर्मशाला में एक रूम लिया اس میں کچن بھی ساتھ میں تھا، باتھ روم، تو اپنے ہاتھ سے ایک ٹائم روٹی اور سبزی بنا لیتے تھے اور شام کے ٹائم کھچڑی بنا لیتے تھے، لیکن وہاں پر ہمیں دو سٹال مل گئے تھے جہاں ایگزیبیشن بھی رکھی، اور جس دن پنڈت جی نے آنا تھا اس دن وہ پروگرام میں جا کر کے بیٹھے، اور ان کو جا کے، جام صاحب بھی تھے جام نگر کے مہاراجا، وہ ہوسٹ تھے، کیونکہ اس سمے وہ مندر کے مینیجنگ ٹرسٹی کے روپ میں جام نگر کے جام صاحب تھے، ان سے ملنے کا اور بابا کا سندیش ان کو، وہ ریئل گیتا ان کو دی، پنڈت جی کو ڈرائی فروٹ کا باکس دیا، بڑے پیار سے انہوں نے لیا، اور پھر جام صاحب نے تھوڑی خوش خیرافت پوچھی بابا کے بارے میں، کیونکہ جام صاحب کی یگل تھی سروئی کی پرنسس، اس کی سیوا ہماری دادیوں نے کی ہوئی تھی، برجندرا دادی بامبے میں تھی، بابا کی جو بہو تھی، اور دیدی منموہنی، تو اس طرح سے بابا نے سٹارٹنگ ایسی کرائی، جبکہ ہم بالکل ایک شبد کہا جاتا ہے نوویس تھے، کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، پر بابا نے ایک دم وی وی آئی پی کی سروس کے لیے بھیج دیا، اور بالکل جیسے نرسنکلپ ہو کے ہم تو پہنچ گئے اور جا کے ملے ان سے، نمستے کی، بابا کی طرف سے یاد دی، اور ساتھ میں وہ جو سوگات تھی وہ دے دی، بعد میں وہی چتر، وہی جو ہم وہاں ایگزیبیشن میں رکھے تھے، وہ سارے پھر ٹرسٹیز کو سمجھا کر کے دیے، جو مندر کے ٹرسٹی تھے سومناتھ کے، انہوں نے کرشن کا چتر تھا جو، وہ تو اندر پوجا کے استھان پر رکھ دیا، اور ترمورتی سرشتی چکر کا چتر اور کلپ ورکش جو ہے وہ پلرز جو تھے مندر کے، ان میں ایک ایک سائڈ لگا دیا، ایک دوسری سائڈ لگا دیا، آنے جانے والے اس کو دیکھے پڑے، مطلب اس طرح سے بابا نے پریکٹیکلی سیلف کانفیڈنس لانے کے لیے اور ساتھ ساتھ سروس کیسے کرنی ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ پریکٹیکلی، پر وہ کر کے آتے تھے، پھر بابا کو سناتے تھے، پھر بابا کریکشن کرتے تھے، ایسی کئی باتیں ہیں جو اس سمے ہمیں لگتا تھا یہ ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر بابا کے پاس آتے تھے تو بابا کہتے تھے بچے یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا، ایسے بولنا تھا، مثال دے رہا ہوں، ایک ترمورتی کے چتر پر کسی نے تھوڑا کسی کو سمجھایا تھا، تو ان دنوں میں بابا کا، برہما بابا کا سیدھا سیدھا پریچے نہیں دیتے تھے، شروع میں تھوڑا گپت ریت سے بتاتے تھے، تو ایک بہن تھی کرسچن بہن، اس نے وہ سنا سارا، پھر کہتی ہے یہ چتر کس کا ہے، تو میں نے انڈائریکٹلی جیسے تھوڑا جواب دیا، بابا کو جا کے سنایا، تو بابا نے کہا ارے بچے ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ شیو بابا کا ساکار مادھیم ہے، اور اس سمے یہاں بامبے میں ایسا سناتے تو بچی بابا سے آ کے اپنا ورثہ اپنا حق لیتی، تو دوسرے دن پھر ایک بزرگ پارسی بابا مل گئے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا، تو ان کو پھر بیٹھ کر کے جیسے سنایا تو پوچھا انہوں نے یہ کہاں ہے ابھی برہما بابا، تو میں نے کہا آئے ہوئے ہیں بامبے میں، ان سے مل سکتے ہیں، میں نے کہا ان سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو. تو دوسرے دن پھر بابا سے پوچھ کے گیا، بابا نے کہا اس کو بولنا گروار کے دن کلاس میں آ جائے. گروار کے دن بابا سینٹر پہ جا کے ملتے تھے، مرلی سناتے تھے، تو اس کو یہ کہا تو وہ آ گیا گروار کے دن. مرلی میں بیٹھا، بابا نے مرلی بہت اچھی سنائی. پھر اس کے بعد جیسے الگ روم میں بیٹھے تھے بابا گدی پر، تو ملنے کے لیے پرسنلی آئے، تو نیچے بیٹھ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگے، تو بابا نے اس کو بہت پیار سے بانہ سے پکڑ کے کہا نہیں بچے، آپ تو بابا کے سمان ہو، بزرگ ہو، بابا کے ساتھ بیٹھو. یہاں گدی پہ بٹھایا اپنے ساتھ، پھر چتر منگائے، ترمورتی، گولا اور یہ کلپ ورکش. پھر بابا ان کو لگ بھگ آدھا گھنٹہ خود سمجھاتے رہے. اگلے دن سے روز کلاس میں آنا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے بابا اپنی کئی باتیں پرسنلی سکھاتے رہے. اس طرح کی ٹریننگ اگر اس سمے ہوتی تو شاید وہ بابا کو اتنی ہمارے اوپر محنت نہ کرنی پڑتی. ہاں اچھا، ابھی میں نے مائک کہا بھی آپ کی طرف دیں کہ آپ کی جو 8 دن ٹریننگ چلی اس میں کوئی کوئسچنز ہوں ایسے جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں. ہے کوئی سوال کسی کے پاس؟ جس کو بھی کوئی پرشن پوچھنا ہو.
جن کے پرشن ہیں پلیز ذرا اگر ہاتھ کھڑا کر دے تو مائک اس طرح سے باری باری دے دیں گے سب کو. ہاں بھائی جی آپ.
ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ویلیوڈ ایجوکیشن کے کرنے کے بعد ہمیں فیوچر میں کس طرح کی سیوائیں کی کس طرح کی سیوا ہم کر سکتے ہیں.
ویلیو ایجوکیشن کی سیوا تو بہت ہی وشال سیوا ہے. یہ سبھی کو پتا ہے کہ آج ویلیوز نہیں ہیں، اس لیے کیا حال ہے. تو ودیوت کالجز میں، اسکولز میں، کلاسز میں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پرسنلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ کورس کے روپ میں کسی کو کرانا. تو ابھی آپ تو آپ کو پوری سوئم کو جانکاری مل گئی ہے، ٹریننگ مل گئی ہے، تو جس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں، ایک ساتھ نہیں، ایک ہی دن میں نہیں، پہلے تھوڑا سا پریچے دے کے انسپیریشن دینا ضروری ہے، اور ونس سم ون از انسپائرڈ پھر آپ اس کو ودیوت گیان بھی دیجئے، ویلیوز کا میڈیٹیشن بھی سکھائیے، کیونکہ بنا میڈیٹیشن کے پھر وہ رہے گی نہیں ویلیوز. اس کو ابزارو کرنے کے لیے آوشکتا ہے میڈیٹیشن کی بھی ساتھ ساتھ. تو پریکٹیکل انبھو ہوگا تو آپ کی محنت سفل ہو جائے گی پھر. اور بچوں کو، خاص کر چھوٹے بچوں کو، اگر یہ بچپن سے ہی تھوڑا پیار سے سکھائیں گے تو ان کے اندر بہت اچھی ویلیوز کی نیم پڑ جائے. نہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے، شیطان ہو بن جاتے ہیں، تو وہ شیطانی چھڑانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں اچھا، جی بہن.
آدرنیہ بھائی گستاخی معاف. جب ہم نئے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور وکی بننے کی پریرنا دیتے ہیں تو ان کے بیچ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تو بھکتی مارگ سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس گیتا کہ شری کرشن نے نہیں کہا یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور شاستروں کی اوہیلنا کی جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے کنوینس کیا جائے, میرا یہ سوال.
پہلی بات تو ان کے اس بھرم کو دور کرنا چاہیے کہ ہم تو گیتا کو ماننے والے ہیں, شاستروں کو ماننے والے ہیں, لیکن یہ مانتے ہیں کہ بھکتی مارگ کے یہ شاستر ہیں, بھکتی مارگ کے شاستر ہیں, اس کی اویلنا نہیں کرتے ہیں ہم. بھکتی کے بعد بھکتی کا پھل ملنا چاہیے, وہ ہے پھر گیان. سمجھے نا, ہم گیتا کو مانتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں مانتے ہیں, شاستروں کو بھی مانتے ہیں. بابا نے بہت کلیئرلی سنایا ہے مرلیز کے اندر کہ یہ بھکتی مارگ کے شاستر ہیں, بھکتی مارگ کی گیتا ہے, اور اس کے بنا بھکتی 2500 سال چل نہیں سکتی تھی, وہ بڑے آوشک تھے. بلکہ یوں کہیں کہ نہیں تو بالکل ہی کچھ نہ بچتا, وہ شاستروں کے کارن کچھ تو رہا. ہاں ایک دم نیگیٹو نہ ہو جائے, اس سے بچا دیا تو بھکتی کا پھر پھل ملتا ہے. بھگوان آتے ہیں, بھگوان آ کر کے پھر ایشوری گیان دیتے ہیں, اس گیان سے آتما کی گیان کی پرکاشٹا ہوتی ہے, سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے, گاڈ ریئلائزیشن ہوتی ہے, وکاروں پر وجے ہوتی ہے. شاستر پڑھتے رہے, بھکتی کرتے رہے, پر وکاروں پر وجے نہیں ہوئی. اس طرح سے تھوڑا ڈھنگ سے سنانا پڑتا, کیونکہ کئی بار یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اسی باتوں سے. سیدھا سیدھا جب ہم کہہ دیتے ہیں شری کرشن گیتا کے بھگوان نہیں ہے, ارے شری کرشن کی بابا نے تو مرلی میں اتنی مہما کی ہوئی ہے, لیکن پھر وہی ہے کہ وہ جب ان کو پہلے نشچے ہو کہ آپ شری کرشن کو مانتے ہیں, آپ شیو کو بھی مانتے ہیں, دونوں کو مانتے ہیں. جی
اوم شانتی بھائی.
ہاں جی
ہم لوگوں نے ایک سبجیکٹ میں پڑھایا ہے کہ ایموشن اس کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں میچورٹی کیسے آنی چاہیے. تو کئی لوگ جیسے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور کئی لوگ بہت انسینسیٹیو ہوتے ہیں اور کسی کے ایموشنز کی بالکل فکر ہی نہیں کرتے ہیں. آپ سائلنس کو بہت مانتے ہیں اور اس کی بہت پریکٹس بھی کرتے ہیں, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سائلنس کی پاور سے ہم اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں.
Being emotional is essential. بنا emotions کے تو نیرستا آ جاتی ہے. Over emotional ہونا اس میں جو originality ہے یا جو practical side ہے اس سے تھوڑا دور ہو جائیں گے, اور اوور ایموشنل ہونے سے دھوکھا بھی کھا جاتے ہیں, یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو ایموشنل ہونا اور اس کو پھر بیلنس کرنا سائلنس کے ساتھ, سائلنس کی شکتی کے ساتھ ایکچولی وہ آوشک ہے, دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. تو دیکھا گیا ہے کہ بیلنس ہونے سے मन बड़ा आराम से बाबा के साथ लगा रहता है। ओवर इमोशनल होने से सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और ओवर सेंसिटिव होने से नुकसान बहुत होता है। छोटी छोटी बात पर भी मन ऐसा, क्या कहें उसको, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा की जो बातें हैं, बीती को बीती करो, छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करो, वो सब जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो फिर अपनी वो बातें सारी सामने आ जाती हैं, सामने आती हैं तो फिर मन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, रात को नींद नहीं आएगी फिर। तो साइलेंस का भाव क्या है? साइलेंस में बाहर की भी साइलेंस है, उसके साथ साथ संकल्पों की भी, धीरे धीरे उसको लिमिट करते हैं, संक्षिप्त करते हैं और फोकस्ड करते हैं, स्वयं, बाबा और उसके साथ में बाबा का निवास स्थान। बाबा के शब्द हैं कि शिव बाबा को उनके परम धाम में याद, अपने मन को वहां ले जाओ। तो वो जितना आप लिमिट करेंगे, उसमें थोड़ा मंथन जरूर करना पड़ता है कि परम धाम में बाबा कहता है वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई संकल्प ज्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइलेंस जो है, पॉजिटिव पीस जो है, उसकी अनुभूति में तो आत्मा जरूर रहती है। खासकर जब इस शरीर में है तो उसका अनुभव भी होता है और उसके अनुसार जो आपकी इमोशंस हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगी, उसमें इम्बैलेंस नहीं होगा। फिर जो राइटियस इमोशंस हैं वो कायम रहेंगी, जो राइटियस नहीं है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखा गया कि वो बहुत हेल्पफुल है जब मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाना है और सिवाय बाबा और आपके और कुछ आपको फील ना हो, ऐसी नियरनेस की फीलिंग रहे, तो उसके लिए देखा गया कि साइलेंस, और खासकर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा अपना टाइम टेबल भी बनाना पड़ता है। मैं अपना पर्सनल जैसे लक्ष्य रखता हूं कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कम से कम, या 9 बजे तक बल्कि बातचीत में ना आऊं, मेडिटेशन, मुरली और साइलेंस में सैर करना बस, तो बहुत हेल्पफुल है वो। फिर दिन में सेवा करनी है बस, उसमें तो बोलना है, साइलेंस में रह करके थोड़ा इतना जरूर होता है कि जब बाबा को देखते थे, साकार बाबा को, किसी से भी मिलने के पहले, जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा आते हैं, मुरली से पहले साइलेंस में सबको दृष्टि देते हैं, तो ऐसे ही साकार बाबा भी प्रैक्टिकल करते थे। शायद आपने सुना होगा, मैंने एक अनुभव सुनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सिन्हा, वो आए थे परिवार के साथ बाबा से मिलने 1963 की बात है ये, माउंट आबू में छोटा हॉल बन चुका था उस समय, हिस्ट्री हॉल जो है, तो उसमें ही बैठ करके बाबा मिले थे। और बाबा का मिलने का तो स्टाइल अपना ही था, जैसे ये व्हाइट शीट बिछी हुई है तो व्हाइट शीट बिछवा देते थे और नीचे बैठ के मिलते थे, जिससे भी मिलेंगे नीचे बैठेंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति भी उनको भी नीचे ही बिठाते थे, लेकिन स्वच्छ शीट बिछा के। तो वो अपना परिचय, बच्चों का परिचय वो सब दे रहे थे, बेटा बहू वो साथ में आए हुए थे, उनकी युगल भी साथ में थी, तो बाबा उनको सुनते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, दृष्टि देते रहे, परिचय दे दिया उन्होंने, फिर बाबा दृष्टि देते रहे, फिर दृष्टि देने के बाद फिर बातचीत शुरू की। तो उससे क्या होता है, बाबा की जो ये इस तरह की प्रैक्टिस, उसमें कुछ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली व्यक्ति जो और विचारों में होता है उससे बिल्कुल डिटैच होकर के उसको सामने देखने में जो आता है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उस समय जो फील होता है उसके बारे सोचना शुरू करते हैं, और उसके फलस्वरूप बाबा जो सुनाते वो बड़ा ध्यान से फिर सुनते, उसका रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती फिर। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करके देखिए आप, कितना आनंद आएगा, बैलेंस रहने से बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन बहुत बढ़िया जाता है फिर, अप्स एंड डाउन्स ज्यादा नहीं आती हैं फिर, ठीक है। हाँ जी
भाई जी, हमें जानना है कि हमने मन बुद्धि के अलग अलग स्तरों के बारे में पढ़ा, लेकिन स्टेजेस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कर्म करते समय हम लोग माइंड की डेल्टा स्टेज को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये हमें जानना है।
क्या कहती हैं बहने?
जैसे कि दादी जी का उदाहरण हमने देखा है।
मेरे को अल्फा बीटा डेल्टा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन
दादी जी का उदाहरण जैसे हमने देखा है, दादी जी, जानकी दादी जी का उदाहरण देखा है, तो कर्म करते भी हम उस कैसे मेंटेन,
जब आप दादी की उम्र में जाएंगे तो आ जाएगी, अभी छोटे हैं, अभी क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी, इस समय की जो स्टेज है ना उसमें रचनात्मक कार्य आपको ज्यादा करने का मन होगा, और उसके कारण डेल्टा से भी ऊपर की स्टेज में जाएंगे आप जी, उससे भी और ऊंची स्टेज में जाएंगे। डेल्टा है बिल्कुल एकदम पीसफुल, पर आपको क्रिएटिव स्टेज में जाना है, रचनात्मक बातें सोचनी है। स्थापना का कार्य पूरा हुआ क्या? हो गया? क्योंकि बाबा ने कहा है जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक आराम नहीं करना है। डेल्टा स्टेज माना आराम है? लोग उसको बहुत महत्व देते हैं, पर हम कहते नहीं, बाबा की तरह हमारा मंथन चलना चाहिए, बाबा को सारा दिन, रात को थोड़ा तो रेस्ट करते लेकिन रात को भी बाबा का संकल्प चलता था, हर एक वर्ग की आत्मा को कैसे संदेश पहुंचे, हर उम्र की आत्मा को संदेश कैसे पहुंचे, भाइयों को भी तो बहनों को भी। आप मुरलियों को ध्यान से थोड़ा स्टडी करें, साकार मुरलियों को खास, एक दिन बल्कि दो तीन दिन एक बात के बारे में ज्यादा बाबा सुनाएंगे, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। दूसरी कभी माताओं के लिए बहुत सुनाते हैं, कभी जज वकीलों के बारे में सुनाएंगे, कभी एजुकेशनिस्ट के बारे सुनाएंगे, कभी संत महात्माओं के बारे सुनाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे, बच्चों के बारे में सुनाएंगे, बहनों के बारे में सुनाएंगे। तो वो मंथन चलता था बाबा का, कोई वर्ग रह ना जाए, और बाबा के सामने जैसे सारे विश्व की आत्माएं हमेशा रहती थी, लेकिन प्रैक्टिकल साइड भी साथ में थी। एक होता है सिर्फ संकल्प से और दूसरी साइड थी कि प्रैक्टिकल उनको संदेश कैसे पहुंचे। तो बाबा खुद हाथ से पर्चे आदि का मैटर लिख करके हम लोगों को देते थे कि इसको रिफाइन करके फिर छपवाना है, पर छपाने से पहले प्रूफ बाबा को दिखाओ, फिर उसमें करेक्शन करते थे। तो प्रैक्टिकल फील्ड में है आप, तो उस हिसाब से भी पूरा प्रैक्टिकल साइड भी देखनी है, पर क्रिएटिविटी लाने के लिए वो डेल्टा स्टेज की मेडिटेशन में जाएंगे तो क्रिएटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, दोनों का बैलेंस रखना। हाँ जी बहन जी,
एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन तो सभी लोग बहुत पूछते रहेंगे, प्लीज हमको मेडिटेशन कराइए प्लीज एक बार।
चलिए मेडिटेशन कर लो। एक चीज कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन भी रोज, खासकर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, क्रिएटिव मेडिटेशन होनी चाहिए, कुछ नया अनुभव करना है तो उसमें बाबा से रूहान करना, बाबा आज कुछ नया अनुभव होना चाहिए, तो देखो आपको कैसे मजा आएगा, नई नई बातें बाबा अनुभव कराएगा। जी बहन,
मेडिटेशन के बारे में एक शंका, मेडिटेशन हम अपनी सच्चाई के बारे में जानने के लिए करते हैं, तो सच्चाई को जानने के लिए कल्पना का सहारा लेकर हम सच्चाई पर कैसे पहुंचे, थोड़ी सी शंका होती है, उधर कंफ्यूजन है।
कल्पना का सहारा लेकर के सच्चाई में कैसे पहुंचेंगे, कल्पना तो कल्पना हो गई, सच्चाई नहीं रही ना। सच्चाई तो सच्चाई है,
लेकिन जब हम कल्पना करते हैं कि अपने आप को ऐसे देखो और वहां पहुंचो और चांद सितारे के परे पहुंचो, तो वो तो कल्पना हो गई, तो कल्पना के सहारे हम सच्चाई कैसे?
नहीं, हम कल्पना नहीं, वो बाबा ने जब ज्ञान दिया है
जी,
ईश्वरी ज्ञान दिया है कि हम सब आत्माओं का रहने का स्थान कहाँ है, जहां से हम आकर के अपना पार्ट बजा रहे हैं। शिव बाबा का भी वही स्थान है, हम आत्माओं का भी वही स्थान है, और उसका बाकायदा बाबा ने साक्षात्कार कराया है, ट्रांस मैसेंजर्स को साक्षात्कार करा करके फिर उसके चित्र बनवाए हैं। उस बेसिस पर हम अपने माइंड को वहां ले जाते हैं और प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस होता है, इमेजिनेशन सिर्फ नहीं है, ज्ञान है। इमेजिनेशन, ज्ञान को इमेजिनेशन नहीं कहा जाएगा, ये तो बाबा ने खुद जो रिवील किया है ज्ञान, उस बेसिस पर हम करते हैं। ठीक है, सच्चाई के आधार से ही सच्चाई को रियलाइज कर सकते हैं, कल्पना नहीं। किसी बहन का नाम कल्पना है क्या यहाँ?
करके आपने एडमिशन लिया है तो डायरेक्ट ये आत्मा बंबई से यहाँ कोर्स करने आई है, ये वैल्यू एजुकेशन का पैम्पलेट पढ़ करके।
बहुत अच्छा।
उसको बैकग्राउंड कुछ भी मालूम नहीं है और पहली बार आई है, और विद इंटरेस्ट, तो मैं तो समझती हूँ बाबा की संकल्प वंशावली ये आत्मा है और जरूर इसका कोई पार्ट है आगे।
ओम शांति। मैं जी एक क्वेश्चन, जैसे मीडिया के द्वारा बहुत सारे काफी सेवाएं फैल चुकी है, जब बहुत सारे उस मीडिया के थ्रू सेंटर पर आते हैं, 7 डे का कोर्स भी करते हैं, और जैसे 7 डे का बेसिक कोर्स पूरा होता है, हम उनको बताते कि अभी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लिए सेंटर आना है, तो वो बताते हम टीवी से ही वो सब कुछ जानते हैं और टीवी देखकर करते हैं, तो उनको हम कैसी कौन सी ऐसी बात कहकर कन्विंस करें ताकि वो रोज सेंटर आए। और रही दूसरी बात, इंटरनली सेंटर में इतना सेवा बढ़ चुका है ताकि हम नमाज शाम का जो योग भी मिस करते हैं काफी टाइम, तो हम ज्ञान और योग में कैसे बैलेंस रखें?
नहीं, क्या करते हैं उस समय आप?
उस वक्त हम कई बार, जैसे बड़ी बहन ने कहा कुछ और है कि सेवा है, जैसे कोर्स भी हो जाता है, तो उसके लिए हम योग में नहीं रह पाते, इसलिए मन में बहुत ये होता है कि हम
सेवा में बिजी होते हैं
जी।
तो सेवा किसकी करते हैं?
वो बाबा की है, पर खास योग के लिए, लेकिन स्थिति भी तो बनानी है ना इसके लिए।
अच्छा नहीं ठीक है, स्थिति बनाने का टाइम है अमृत वेला। अमृत वेला अगर आपने मिस किया तो फिर स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए बाकी सारा टाइम होता है सेवा के लिए, सेंटर्स पर खासकर, लेकिन अमृत वेले स्व सर्विस है, सेल्फ सर्विस। अमृत वेले अच्छी तरह से जब आप जो बताया ना बहन को क्रिएटिव मेडिटेशन होनी चाहिए, रचनात्मक, तो रोज कुछ नया एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में एडिशन होनी चाहिए, वही का वही वही का वही बात वो सोच करके बैठते हैं ना तो क्या होता है, फिर पीसफुल हो जाते हैं बहुत, पीसफुल, और उसकी आवाज भी आने लगती है। परम धाम से ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन उसमें मतलब नींद आ जाती है, तो वो नींद वाले योग से ये तो जरूर है पीसफुल तो बहुत फील करते हैं, लेकिन एडिशन कुछ नहीं होगी उसमें। तो जिस समय भी मेडिटेशन खास करने बैठते हैं तो एक संकल्प मन में रखना होता है कि आज कुछ नया अनुभव होना चाहिए बस। और अगर आप बाबा के साथ कनेक्ट करके बाबा से कहें बाबा आज तो कुछ नया अनुभव होना चाहिए, फिर देखो क्या होता है। उसमें भी बाबा क्या चाहता है वी डोंट नो, ये भी एक और साइड है मेडिटेशन में, एक अनुभव है वो कि हम सोचेंगे आज बिल्कुल बाबा पीसफुल अनुभव होना चाहिए और हमारे उस समय मेडिटेशन में कुछ और ही बात हो जाएगी, आपके विजन में कुछ ऐसी बात आएगी जिसमें या तो शक्ति स्वरूप आ जाएगा उसका अनुभव होगा, या कोई ऐसा कोई चित्र आपके सामने आने लगेगा जिसकी सेवा करनी होगी, वो पता नहीं रहता है। तो कर्ण करावण हार क्या कराता है वो उसके ऊपर छोड़ते हैं, पर हम तो जाके उनके पास अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बाबा आ गया, बहन जी के कारण मैं एक फिर से एक मिसाल रिपीट कर रहा हूं, आपके मोबाइल से जब आप बात करते हैं कहीं बात करना शुरू करते हैं तो पता है कि आप अबू रोड में हैं, वो बॉम्बे में है, ठीक है। बात करते करते थोड़े ही टाइम में एक डेढ़ मिनट के अंदर यू लूज द कॉन्शियसनेस ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस, दोनों मन से चले जाते हैं, एक दो को ऐसा सामने देखते हैं, बातें ऐसे करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी कोई उसकी बात पर रिएक्ट करते हैं, ऐसे होता है। तो इसी तरह से मेडिटेशन में भी बहुत प्यार से जब बाबा के साथ मन लगाते हैं, इमोशंस आई उसमें, प्यार की इमोशन है, उसके बिना समीपता का अनुभव नहीं होता है, और फिर उसी इमोशंस के फलस्वरूप जब समीपता में आते हैं तो फिर अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि बाबा क्या किस किस का सागर है, हाँ? तो जिस बात का बाबा सागर है वो आपको ज्ञान तो मिला, पर आपको अनुभव भी तो होना चाहिए। सर्वशक्तिवान है तो उसका अनुभव भी होना चाहिए। तो जितना अपने आप को समीप महसूस करते हैं, उस समीपता का इन्फ्लुएंस स्वयं पर होना चाहिए। फिर आप देखो, उसमें साइलेंस में रहेंगे तो वो इन्फ्लुएंस आपको फील होगा, समानता में आते जाएंगे। बाबा की जो लेटेस्ट बातें हैं उसमें क्या है, समीपता, समानता, संपन्नता। तो स्टेप बाय स्टेप उसको आप थोड़ा एक्सपीरियंस करने का लक्ष्य रखेंगे, बाबा जरूर कराएगा। ठीक है अभी? हाँ जी।
ओम शांति
जी।
जी ड्रामा का नॉलेज जो है ना,
हाँ जी,
ड्रामा का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से मदद करता है, और दूसरा भाग मेरे सवाल का कि हम ज्ञान और योग का चार्ट कैसे रखें। ओम शांति।
एक सेकंड, ड्रामा का ज्ञान कैसे मदद करता है?
हाँ, दैनिक जीवन में हमारे ड्रामा का ज्ञान मदद कैसे करता है,
और
दूसरा भाग कि ज्ञान और योग का चार्ट कैसे रखें।
संक्षिप्त में बताऊंगा, ड्रामा का ज्ञान अगर ठीक रीति से हमने समझा है तो ये आपको एक बहुत ही रोमांचक, आनंद देने वाली बात अनुभव होगी कि हम इस ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी होने के कारण आद से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं। जो एक्स्ट्राज होते हैं वो बीच में आते हैं, बीच से चले जाते हैं। इसलिए हमें अपना पार्ट इतना एक्यूरेट बजाना चाहिए। एक्यूरेट माना ज्ञान को अच्छी तरह समझ करके, उसकी धारणा अच्छी तरह करके सर्वगुण संपन्न बनना, सोलह कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, और मन तक भी किसी को दुख ना दें, अहिंसा परमो धर्म बनना। हीरो पार्टधारी के ये लक्षण है। सुना? तो इस बात को जब अच्छी तरह से अपने मन में पक्का करके चलते हैं तो हमारे कर्म जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ बने रहते हैं। किसी बात में भी नेगेटिविटी नहीं आती है फिर, और हर समय ऐसा पार्ट बजाएंगे जो स्वयं को भी बहुत प्रिय लगता है, अन्य आत्माओं को भी प्रिय लगता है, और बाबा को भी बहुत प्रिय लगता है। जिसको कहते हैं सो पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद। ठीक है? दूसरा सवाल क्या था? चार्ट के बारे में। चार्ट देखो छपा हुआ है, चार्ट मैं अभी शॉर्ट में कहता हूं। हमारे मुरली वाले राजू भाई हैं, उसने बहुत अच्छा वो चार्ट बनाया हुआ है, जो हम लोग बाबा साकार बाबा के दिनों में जैसा बाबा ने कहा था वैसे ही वो क्वेश्चंस नोट करके हम और चार्ट रखते रहे हैं, और वो रखते 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 नेचुरल बन जाता है। तो वो चार्ट रखना बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है, इसलिए वो मुरली वाले भाई जो हैं उनसे वो चार्ट की कॉपी ले लें। जी इधर से कुछ उठे थे बीच में। गीत अपने पास अच्छे अच्छे हैं ना, रिकॉर्ड किए हुए गीत बहुत अच्छे हैं, जो मन को खुशी में ले आए, ऐसे गीत उनको देने चाहिए कि ये सुनना और शिव बाबा को याद करना, बस इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, पढ़ने के लिए भी दे सकते हो कुछ, मन की शांति ऐसा कुछ। जी बहन बोलिए। सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छी ट्रेनिंग किस बात से होती है? एग्जाम्पल बनने से। ठीक है ना, तो अपना एग्जाम्पल भी सेट करना, दृष्टि से भी थोड़ा मैग्नेटाइज करना और शब्दों से भी मैसेज देना। ओके, तीनों बातें यूज करना और चौथा फिर जो किताब है अपनी अच्छी अच्छी वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, आपने अपने अनुभव से हमें तृप्त किया और समस्याओं का भी समाधान किया, बहुत सारी शंकाएं थी और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार की हमें क्लासेस और आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी। एक बार फिर जोरदार ताली से। अभी भाई साहब से हम 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे, भाई साहब से दृष्टि भी लेंगे।
अच्छा भाई, चलो एक गीत सुना दो।
घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।